ओम शांति। अभी हमारे सामने उपस्थित है हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विजया बहन, जिनका हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी, आज आपका विषय ये है पुरुषार्थ में रमणीकता कैसे हो। सो आज आपने करके दिखाया है, ड्रामा में नूंद कुछ था, हो कुछ रहा था। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बताया गया कि आपको आना है और क्लास करानी है। हांजी का पाठ और एडजस्टमेंट पावर को यूज करते हुए आपने बहुत रमणीकता और सरलता से इस ड्रामा की भावी को स्वीकार किया और हमें लाभ देने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। आदरणीय दीदी जी ज्ञान में 1975 से है, तभी से ही फिर आपने अपना जीवन बाबा की सेवा में दे दिया। अपना ही नहीं, उनका पूरा लौकिक परिवार, माता पिता अंकल सब, जो फुल फैमिली जिसको बाबा कहते हैं, पूरे के पूरे झाड़ जो शुरू में आए, बस ऐसा ही आपका उदाहरण है। आपकी लौकिक में दो बहनें, वो भी सेंटर पर है, जिनका एक ग्रुप यहाँ पर है लखनऊ से, राधा बहन जी के वहां से, और तीसरी बहन है ब्रह्मा कुमारी पद्मा बहन। लौकिक में आपके पिताजी डॉक्टर रह चुके हैं। यज्ञ की सेवाओं में शुरुआत में आपने देहरादून में प्रेम बहन के साथ सेवाएं दी। वैसे तो छोटे छोटे बहुत स्थान है जहां आपने सेवा करके उस स्थान को फलीभूत किया है, और स्थूल में भी आपके परिवार ने बाबा की सेवा में बहुत कुछ स्थान, कुछ जमीन ऐसे यज्ञ सेवा में समर्पित किया हुआ है। तो ऐसी हमारी आदरणीय विजया दीदी, जिनके नाम को सार्थक करते हुए आपके जीवन में एक परिस्थिति थी अस्थमा की बीमारी, जिस पर आपने प्रैक्टिकल योग के प्रयोग द्वारा उस बीमारी को हराकर विजय प्राप्त की है और विजया नाम को सार्थक किया है। तो ऐसी कुछ युक्तियां आज ये भाई बहनों को भी दो, ताकि वह भी विजयी रतन बन सके। परंतु बहुत रमणीकता वाला पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि भाई बहनों के उद्गार ये है कि बाबा के हवाले छोड़ा है ये जमाना, बाबा के हवाले छोड़ा है ये जमाना, उनके भरोसे छोड़ी है ये दुनिया, उनके भरोसे छोड़ी है ये दुनिया, बाबा इस जमाने के तरफ तो देखो इसे कैसे निभाएंगे, बाबा इस जमाने के तरफ देखो ऐसे कैसे निभाएंगे। बाबा और दीदी मिलकर कोई ऐसा आत्मा को रास्ता दिखाओ, कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जो हम पार उतर जाए और आपकी भी लाज रह जाए। इन भावनाओं को पूरा करते हुए हम आदरणीय विजया दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में लोग, लौकिक के लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, खूब खर्चे करके जाते हैं। अलौकिक लोग तपस्या करते हैं। हमारा बेहद परिवार इतना बड़ा हो गया है, सबको भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे समय पर, गर्मी का समय, दूसरा सर्कमस्टेंस ऐसी आ गए थे कि शायद कुछ प्रोग्राम नहीं करना होगा, मालूम है ना, वो स्थगित हो गया। मधुवन माउंट आबू आकर के तपस्या करना, कुछ दिन बिताना बाबा के घर में, उसके लिए आने वालों की लंबी लंबी क्यू लगी, वर्षों की क्यू लगी। उस बीच में से आप सभी आए और आनंद ले रहे हैं, प्रकृति का भी आनंद, भगवान के घर का भी आनंद, भट्टी का भी आनंद। तो ये कितना बड़ा भाग्य है या नहीं? अपना भाग्य, क्योंकि लाइन में है बहुत सारे लोग, हम भी यहां आना चाहते हैं भट्टी करें ऐसे, वो आपको लॉटरी मिल गई है। वास्तव में देखा जाए संगम युग मौजों का युग है या नहीं? बहुत ही वैल्यूबल युग है संगम युग, इतना वैल्यूबल है कि सतयुग से भी वैल्यूबल। इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम बीच में हैं। एक तरफ कलयुगी कलयुगी दुनिया का वातावरण कैसा है, और हम लोग जब ज्ञान में आए, ब्राह्मण बने, तब हम जब आए, हमारे लास्ट जन्म का लास्ट समय था, अर्थात हमारी तमोप्रधान अवस्था थी। कार्मिक अकाउंट का, जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब का बोझा सिर पर था या नहीं? ये सब लिए हुए हम बाबा के बन गए। जैसे ही बाबा की पहचान मिली, ज्ञान मिला, अंदर उमंग उत्साह खुशी, खुशी का पारवार नहीं, आनंद ही आनंद। बोझे लिए हुए हैं, अनेक परिस्थितियां हैं संबंधों में, चाहे वो आर्थिक तौर पे या किसी भी तरह से क्राइसिस चल रही है, ऐसे नहीं कि नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के भी हो सकता है। उस सब के बीच में जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला तो बहुत आनंद खुशी। हमने अभी देखा ही नहीं कि क्या क्या कौन कौन सी बातों को अपना के चलना है, लेकिन बस भगवान मिला और कुछ नहीं चाहिए। तभी बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना। फिर हम अच्छे से पुरुषार्थ करने लगते हैं, और उस समय के दिनों को हमें सच में भूलना नहीं चाहिए। उस समय हमारे मन चित में कोई भी नाम मान शान कोई इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं रहती है, केवल बाबा, बाबा का घर, बाबा की सेवाएं। दुनिया बिल्कुल ही हमें, जैसे कि ये हमें चाहिए ही नहीं, ये दुनिया ही नहीं चाहिए, इस तरह की भावना हमारे अंदर आती है। हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, करते करते धीरे 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 क्या होता, थोड़े से पुराने होने के बाद कहीं ना कहीं ढीलापन आने लगता है, थोड़ा सा बोझा फील होने लगता है, कहीं कहीं ऐसे लगता बाबा की बातों को पहले जब जो बाबा ने कहा हाँ जी बाबा, जो कहा वो हमें एक एक शब्द उड़ाने लगे थे। अभी बाबा तो कहते हैं शुरू हो जाता, बाबा ने तो कहा है, लेकिन हम तो घर गृहस्थी में हैं, हमारे इतना कारोबार है, बाबा ने तो कहा परंतु, अब बताइए हमने क्या शुरू करना शुरू किया, लेकिन परंतु बाबा तो कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम बाबा से बड़े समझदार बन गए, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़े से पुरुषार्थी बन गए, और इतने समझदार हो गए कि बाबा को कहने लगे, बाबा तो कहते हैं परंतु, अरे इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी घर गृहस्थी निभाना तो पड़ता है ना, बाबा कहते हैं निभाना पड़ता है ना। ये बातें हमारे अंदर आने लगती हैं, वो बातों को लेके हमारे पुरुषार्थ में कहीं न कहीं थोड़ा सा जो हमें ऊपर चढ़ना चाहिए थोड़ा सा स्थगित हो जाते, नीचे तो नहीं उतरते क्योंकि पल पल हमें उड़ती कला की ओर, चढ़ती कला से उड़ती कला की ओर जाना, परंतु हम क्या करते हैं, परंतु लेकिन बाबा तो कहते हैं, बातों को लेके वही के वही हो जाते हैं। तो वही के वही होते हैं तो बाबा क्या कहते हैं उनको, ना आगे बढ़ रहे ना पीछे हट रहे, तो उनको जामड़े कहते हैं बाबा। तो ये शब्द सुनते ही लगता नहीं नहीं बाबा हम तो जामड़े नहीं है, फिर वो याद आ जाते हैं बोने नहीं होते बोने, उनको देखें तो ही ऐसे लगता वो, फिर अपने पुरुषार्थ में सोचे नहीं नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हम तो कौन है, मन में क्या आता, हम तो अपने आप को फरिश्ते देखते हैं, अपने आप को भविष्य प्रहलाद स्वरूप में देखते हैं। तो हमें पहले तो ये सोचना है कि ये बाबा ने कहा मुझे, हमें नहीं मुझे कहा, क्यों कहा, इस संसार रूपी ड्रामा का वो डायरेक्टर क्रिएटर है वो मेरा बाप है और उसको मेरे में विश्वास है कि मेरा यही बच्चा मेरी यही बच्ची ये काम कर सकती। हर व्यक्ति को जो अपना कारोबार मिला है, जो अपना घर परिवार मिला है, संबंधी मिले हैं, जो बिजनेस सर्विस जिसको जो मिला है, हर व्यक्ति को जो भी मिला तभी हम कहते हैं ना ये सब कैसे निभाएं, इस बीच में कैसे पुरुषार्थ करें। तो हमें उस समय क्या सोचना है कि बाबा ने इस संसार रूपी डायरेक्टर का, इस खेल का जो डायरेक्टर क्रिएटर है मेरा बाप, उसको मुझ बच्चे में इतना विश्वास है कि एक काम यही कर सकता है, इसके अलावा दूसरा दुनिया में है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है या नहीं। मुझे जो रोल मिला मेरे अलावा दूसरा कोई कर सकेगा, कितना भी सिखाओ पढ़ाओ, आपका जो रोल है वो दूसरा करेगा, इम्पॉसिबल। तो उस पिता परमात्मा को विश्वास है कि यही बच्चे करेंगे और उसको इतना विश्वास है कि मैं जो बोलूंगा यही मानेंगे, उसी के लिए गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, गीता ज्ञानदाता ने गीता का ज्ञान दिया, किनको दिया, किनको दिया बताइए, हाँ जवाब देखिए, हाँ एक जना बताइए, पांडवों को कहते हैं, पांडवों को दिया नहीं, पांडवों को नहीं, एक अर्जुन को दिया, एक अर्जुन को दिया, पांडवों को नहीं दिया। हम सब पांडव हैं लेकिन हम अर्जुन कब बनते हैं, मेरा बाबा मेरा खुदा दोस्त मुझे बोल रहा है, मुझे ही करना है, बाबा की मुरली को हम कभी ये ना कहें बाबा तो कहते हैं परंतु लेकिन, ये शब्द अर्जुन नहीं कहेगा, पांडव कहेंगे। इसीलिए हमें तो पांडवों में अर्जुन बनना है, मुझे बाबा ने कहा और मुझे बाबा को विश्वास है कि यही कर सकती है, यही कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं, तो कितनी खुशी रहेगी बताओ, हमारा पुरुषार्थ हमें बोझिला नहीं लगेगा, अमृत वेले से लेके रात्रि तक की दिनचर्या हमारा, जब हम इस बात को समझ करके करने लगते हैं, पहली बात तो हमें हमारा पुरुषार्थ बोझा या बर्डन नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण माना ही क्या है, ब्राह्मणों को क्या कहा गया, खुशी जैसी खुराक नहीं, हमारा खुराक क्या है, खुशी है, हमारे हर पुरुषार्थ में हमें खुशी, हमें केवल एंजॉय करना है, कुछ भी बात हो, चाहे शारीरिक व्याधि हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे कोई टक्करबाजी हो, कोई भी बातें हो, क्योंकि हर कल्प के हम विजयी आत्मा हैं। हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हैं और वो मेरा बाप है, तो मैं हर बात में विजयी होकर के ही रहूंगी। तो जब हमारे अंदर ये निश्चय है तो हर परिस्थिति को, हर बात को हम एंजॉय करेंगे। बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने सब प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप ब्रह्मा बाबा को देखिए, बाबा ने यज्ञ की स्थापना किया जब सब शुरू में आए थे। जब यहां हम लोग इकट्ठे हुए हैं ना, सब कौन है, नए नए नहीं आए हम, ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, बाबा को पहचान लिया, जीवन का साथी बना लिया, मन बुद्धि को अर्पण किया, समझदार बन के आए हैं बाबा के घर, है ना। जब स्थापना हुई थी 400 लोग थे, सब अपने अपने संस्कार लेके, जैसे हम भी नए नए आए थे तो क्या लेके आए थे, कलयुगी संस्कार, कलयुगी बोझा ही तो लेके आए थे। बाबा ने, दादियों ने, हमें प्रेम से, हमारे दीदियों ने हमें क्या किया, प्रेम से पाला दिया, कभी नहीं कहा ये बोझिली आत्मा, ये विकारी आत्मा, ये तमो प्रधान आत्मा हमारे सामने आई, नहीं कहा, बहुत प्यार से हमें सींचा। बाबा के सामने जो थे सारे नए नए, सब अज्ञानी आत्मा थे। खुद ब्रह्मा बाबा पढ़ाई पढ़ रहे थे, साथ साथ उनको पढ़ा रहे थे। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उनकी पालना ऐसी दी, बाबा ने भी निमित्त बन के ऐसे पालना किया। हर एक व्यक्ति दिल से स्वीकारा, बाबा है, ये माँ है, मम्मा है, कैसे स्वीकारा, उन्होंने हर विषम परिस्थिति के बीच में भी इजीली पुरुषार्थ कराया, बहुत ही इजीली। तो इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है बोझिला नहीं, हम अमृत वेले उठ रहे हैं, हमें उसमें उठना पड़ेगा नहीं, खुशी, क्योंकि हमें हर पल को, संगम युग की एक एक पल को एंजॉय करना है, एक एक घड़ी को एंजॉय करना है। उठ रहे हैं प्रभु मिलन करने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, भगवान से अपॉइंटमेंट, एक सीएम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता, कितने उतावले होते हैं हम। आजकल थोड़ा सा प्रेसिडेंट अपने क्लोज ब्रह्मा कुमारी से, बाबा की बच्ची होने के कारण हर व्यक्ति को लगता है कि मुलाकात करे, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है ना, एक पल के मुलाकात के लिए कितना अच्छे से फोटो लेते हैं, वो फोटो देख देख के खुश होते हैं, होते हैं या नहीं, हम ब्राह्मण होकर के भी। हम हर रोज अमृत वेले आंख खुलते ही किससे मुलाकात कर रहे हैं, तो वो हमें एंजॉय करना है। ये नहीं कि योग करना है, याद करना, ओ जल्दी उठना, लेट हो गया, इतनी देरी से सो रहे हैं, सवेरे उठना पड़ेगा, ये शब्द हम ब्राह्मणों को नहीं आना चाहिए। अगर मुझे लेट हुआ, मैंने कुछ सेवा, क्योंकि ब्राह्मण माना ही उनका हर लौकिक कारोबार भी है, अगर हम ज्ञान योग युक्त है, धारणा मूर्त होकर के कारोबार कर रहे, वो भी सेवा है। आप लौकिक कार्य के लिए आपको लेट तक जागना पड़ा, परंतु अलौकिकता को हमने जोड़ के चल रहे, उसमें भी सेवा है। सेवा हमें खुशी देती है, सेवा हमें उमंग उत्साह बढ़ाता है, जहां उमंग उत्साह होता वहां बोझा नहीं, बर्डन नहीं। तो क्या होगा हमारा पुरुषार्थ? इसीलिए अगर रात को कितना भी देरी से हो, अभी हमें नॉलेज है, हमारी मामा ने जो पुरुषार्थ किया कैसे किया, 2:30 बजे मामा उठ के बैठती थी, जबकि उस समय अमृत वेला संगठन में बैठ के नहीं करते थे, उनका अपना रूटीन होता था उस संसार, उस जमाने में जगदम्बा माँ तभी बनी, वो 2:30 बजे उठ करके योग करती है, वाइब्रेशन देती है। बाबा कहते हैं भक्तों की घंटियां नहीं सुनाई देते, मम्मा कहती मुझे सुनाई देते हैं, इसीलिए मैं जागती हूं, तब मैं उनको सकाश देती हूं। सकाश की बात आज हमारे सामने स्पष्ट हुई, उस समय मम्मा करती थी। तो हमें भी अंदर से एक लगन हो, खुशी से चलेंगे बाबा से मुलाकात करने। तो हमें हमारा पुरुषार्थ बहुत इजी वे में करना है, क्योंकि हमें एक तो पहली बात याद रखना कि हमारा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म, सर्वोच्च जन्म, सारे संसार में हम ही कुछ ही आत्माओं को ये रोल मिला है, और इसी जन्म में हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ से हमारे पूरे कल्प का पार्ट फिक्स करते हैं। तो इसको हमें, हम भविष्य हमारे जन्म कैसे चाहते हैं, खुशी का, सुखी जीवन, जीवन में मौज करना सबको पसंद है, तो हमारा मौज का जीवन हर कल्प में खुशियों भरा हो, उसके लिए संगम के हर पुरुषार्थ को खुशी खुशी से करना है, एंजॉय करना है। तो कैसे अमृत वेले से लेकर के शुरू करना है कि मेरा अमृत वेला अलग अलग संबंध हो, बाबा के साथ सर्व संबंधों से याद करो, कभी कोई संबंध के साथ किसी न किसी रूप से याद करके फुलफिल हो जाओ, ताकि मुझे भविष्य सर्व संबंधों में सुख की अनुभूति हो। दूसरी बात, हम सारे दिन की दिनचर्या में बाबा को साथी बना करके रखें, बनाते सभी हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा उसका एक एक याद करके एंजॉय करना है। तो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे हम बाबा को तो यूज करते हैं, एक एग्जांपल एक माता की, एक माता ने कहा कि मैंने बाबा को बेटा बनाया है। तो वैसे तो माताएं कहती नहीं नहीं बाबा को बेटा कैसे बनाए, फिर जब समझती हैं तो कहती हाँ बेटा है, तो चाहे बेटा बनाओ बाप बनाओ तो उसके साथ क्या होगा, रमणीकता का अनुभव ही होगा ना। तो माता ने क्या कहा कि बेटा बनाया, तो उसको पूछा गया कि आप उसको बड़ा बेटा बनाए हो या छोटा, तो उसने क्या जवाब दिया कि उसको मैं समय अनुसार बना लेती हूं। कैसे, मुझे कोई चीज गुम हो जाती है, कोई चीज याद नहीं आती, छोटा मोटा काम मुझे चाहिए होता तब मैं उसको छोटा बेटा बना लेती हूं, जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना पानी लाके दे, उधर से चाबी ढूंढ के लाके दे, छोटी मोटी चीजों के लिए छोटे बच्चों को यूज करते हैं। तो उसने कहा मैं छोटा बेटा बना लेती हूँ छोटे छोटे काम के लिए, तो वो मेरा शिव बालक मेरा काम कर लेता है। कैसे करता, वो आके तो नहीं करेगा ना, वैसे आप लोग भी करते हैं, ऑफिस जाना होगा या घर की चाबी होगी या आपकी व्हीकल की चाबी होगी रख दी, निकल पड़े ओ चाबी की हाथ में तो पकड़ी थी कहाँ रखी कहाँ रखी, फिर क्या होता वो नहीं मिल रही, तब कहते बाबा चाबी नहीं मिल रही, एक सेकेंड एक मिनट शांति से बैठ जाते, क्या होता तुरंत बुद्धि को स्ट्राइक होता, वहां जाते हैं, वही हाथ जाता जहां चाबी थी, या वही पेन चाहिए, कोई भी चीज छोटी मोटी होता या नहीं होता, सबके साथ होता, तो क्या है ये रमणी का तर्क पुरुषार्थ ही तो है। उसको हमने बालक बना लिया। वो माता ने कहा मैं बालक बना लेती हूं ऐसे मेरे काम हो जाता, तुरंत बुद्धि में आ जाता है। और जब बड़ा काम होता, कुछ कुछ तकलीफ होता, बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो तब मैं उसको बड़ा बेटा बना लेती हूं। जो छोटे बच्चे नहीं कर सकते, बड़े जो काम करते हैं, तब उसको बड़ा बेटा बना लेती हूं, तो वो काम मेरा बाबा कर देता। होता है या नहीं होता, सबका भी होता है, बड़ा काम भी है। बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ तो लेते हैं, फिर बाबा कहते बाबा आप वही प्रश्न देना जो मैंने पढ़ाए, अब लो क्या कर रहे हैं। फिर आके क्या बताते हैं, बाबा ने एग्जाम में वही प्रश्न दिए, तो बाबा बैठ के क्वेश्चन पेपर बनाया था क्या? लेकिन हर पल हर घड़ी वो साथ ही साथ कैसे निभा रहा, और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो एक एक बातों को हम स्मृति में लाएं कि कैसे हम बाबा को यूज करें। वो बाबा कमाल है संगम में। वैसे तो भक्तों के वश भगवान कहते हैं, एक्चुअली वश नहीं होता भगवान, अल्पकाल का उनको साक्षात्कार कराता। हमारे वश हमारा भगवान है, बच्चे के रूप में है, बाप के रूप में है, साजन के रूप में है, पिता के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, सदगुरु के रूप में, और तो और वो कहता है आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अरे बाप रे, ये शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करा लेते हैं उससे काम, करा लेते हैं या नहीं। तो देखो हमारा ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, ऊंचे से ऊंचा परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा कार्य, हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट पढ़ाई, लेकिन कितना इजी वे में हम कर रहे। एक एक बातों को हम याद में लाएं तो खुशी का पारा चढ़ता। तो बाबा कैसे पुरुषार्थ कराता था या बाबा कैसा रमणीक था, एक दो एग्जाम्पल देती हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने अभी दो दिन पहले भी बताया कि वो एग्जाम्पल कि परीक्षा भी लेना, निश्चय बुद्धि का भी बताना मम्मा के बारे में, वो एक एग्जाम्पल मैंने अभी दो दिन पहले बताया था, वो आप सब ने भी सुना होगा, लेकिन मतलब वो अपनी हिस्ट्री में आता है, सुना होगा। वो एग्जाम्पल मैंने जिनके साथ बीती घटना, उनके क्लोज, उनके साथ, उनसे सुनी हुई बात सुनाती हूँ, क्योंकि मैं जिस सेंटर पे ट्रेनिंग के बाद गई थी वहां की ही वो बात थी, तो वहां के भाई बहनों ने मुझे जो सुनाया और मैंने भी इंटरेस्ट से पूछा था घटना को, तो वो बात बताती हूँ कि जैसे बाबा कुटिया में मिलते थे, छोटा सा ग्रुप, 5-7 लोगों का ग्रुप, कुटिया हट कहेंगे, चिल्लाएंगे या डांटेंगे नहीं, तो बाबा ने क्या किया। अब देखो बच्चों से बाबा मुलाकात करा, ग्रुप से, ग्रुप कितना बड़ा, 5-7 लोगों का, मम्मा बैठी, बाबा बैठे हैं और लच्छू दादी हाथ में पकड़ के लेके आई। तो बाबा कौन है, बाप दादा जिसमें शिव भगवान बैठा है, भगवान का रथ ब्रह्मा आदि पिता है, उनके आगे वो बच्ची लेके आई है, तो बाबा क्या कहते हैं, चल यहां से नहीं बोला, अच्छा अच्छा बच्ची दिखाओ दिखाओ बोला, हाथ में लिया, हाथ में लेके हाँ कितना अच्छा है ये, रंग बिरंगा कितना सुंदर है, ऐसे दिखाने लगा बाबा ने, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ना मामा। तो मामा ने कहा जी बाबा, मामा बाबा के हर बात को जी बाबा कहती थी ना, जी बाबा। तो किसी किसी को कुछ संकल्प आया होगा, उतने में बाबा ने कहा ये जो है ना बाबा मामा को खिलाएगा। अब बताओ आप किसी को अगर कहा जाए तो क्या करोगे। तो मामा ने क्या जवाब दिया, मामा ने कहा जी बाबा। तो आओ मामा आके सामने बैठ गई बाबा के सामने, और कैसे, अगर आपको बाप दादा टोली खिलाने आपके सामने करें, आप मुंह खोल के कैसे भावना से बैठे, नहीं भगवान मुझे टोली खिला रहा। अब वो क्या चीज था, मम्मा आके मुंह खोल के भोली बच्ची बन के बाबा के सामने बैठ गई। मम्मा बाबा बता देखो ये है ना, बाबा मम्मा को खिलाएगा। मम्मा मस्त ऐसे मुंह खोल के बैठी, मस्त बाबा ऐसे दिखा रहा कर रहा, सब डक डक सबको होने लगा। उसमें से कोई उठ के भाग के चला गया, कुटिया से बाहर भाग के चले गए, क्योंकि वो लोगों ने मुझे सुना है वो बता रहे हूं मैं। कोई कोई तो उठ के खड़े हो गए, कोई देखने लगे मम्मा अब खाएगी कैसे, कोई तो कहे भगवान और क्या ये हरकत है, क्या गंदी चीज, ऐसे सबके अपने अपने संकल्प। ये सब कर रहा था, मम्मा मस्त बैठी थी। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे क्या संकल्प चला। बाबा ऐसे लेके गया नजदीक तक, कोई भाग गया, कोई उठ के खड़ा, कोई देखने लगा, सब हुआ। अब भगवान को परीक्षा लेनी थी, लेकिन ये भी एक रमणीकता थी। लेकिन बाबा ने पूछा, वो जो भाग के गया था ना बाहर से देख रहा था वो भाई आके, बाबा मैं तो डर गया कहीं मुझे ना खिला दे इसलिए मैं भाग के गया। दूसरे गए थे मम्मा को खिलाएगा बाबा और मम्मा कैसे खाएगी हम देख रहे थे। तीसरा कहीं हमको ना बोले तब तुरंत भाग जाए इसीलिए खड़े रहे। सबके अपने अपने संकल्प सबने, क्योंकि बाबा की आगे तो जो सच है वही बता देते ना, बनावटी नहीं बोलते थे, सबने सुनाया। फिर मम्मा को बाबा ने पूछा, मम्मा आपको क्या संकल्प चला, तो मम्मा का जवाब क्या था मालूम है? मम्मा का जवाब, मम्मा को संकल्प ही नहीं आता। मम्मा बाबा ने कहा मम्मा निसंकल्प अवस्था में थी। क्यों? क्या मम्मा को बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी? पहली बात, बाबा बड़े खेल के तौर पे इस बात को बताते हुए हर एक की स्थिति को चेक करवाया और मम्मा की स्थिति को बताना था, मम्मा कैसे हाईएस्ट स्थिति की आत्मा, मम्मा कौन है। बुद्धिवानों की बुद्धि के आगे अपनी बुद्धि को अर्पण करने वाली, अपनी बुद्धि नहीं चला दी थी, परंतु वो है कौन आज के डेट पे, कलयुग के अंत में भी हर विद्या संस्थानों में सबसे पहले सरस्वती माँ का गायन पूजन होता है। हर विद्या संस्थानों में विद्वान पंडित आचार्य हर व्यक्ति पहले उसकी आराधना करते हैं, तो वो कितनी महान बुद्धिवान, बुद्धि की देवी, विद्या की देवी, परंतु परमात्मा के आगे अपनी बुद्धि को ऐसे अर्पण किया कि संकल्प ही नहीं। बाबा के आगे कहती मेरे संकल्प नहीं चलते, तो ये बाबा को पाठ भी पढ़ाना था। हम परंतु लेकिन पर बाबा तो कहता कहते हैं ना, उस सबको मिटा के अपनी बुद्धि को अर्पण करके उस बुद्धिवानों की बुद्धि के ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ये अमूल्य समय फिर नहीं मिलने वाला है। हर बात को बाबा की मुरली एक अमृत वेला कभी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। एक शब्द मिस हुआ न जाने कितने, एक अगर हमारी मुरली मिस हुई कितने खजानों को हम मिस कर लेंगे। तो इसलिए बाबा की इस बात में मम्मा के निश्चय बुद्धि को बताना था, बच्चों में अभी भी संशय बुद्धि है उसको चेक करके चेंज करें, ये पाठ पढ़ाना था। दूसरी एक बात बाबा की बताती हूँ। बाबा देखो बच्चों के साथ क्या करता था, खेल खेलते थे, बड़े रमणीकता चेस खेलते थे, हार जीत का होता था बड़ा एंजॉय करते थे, खेल खेल में ज्ञान बताते थे, बैडमिंटन खेलते थे, खेल खेल में ही तो ज्ञान भी सुनाते थे। लेकिन विषम परिस्थितियों में कैसे बाबा बच्चों को उसका आभास होने नहीं दिया, लेकिन पुरुषार्थ कराया, उनको खुशनुमा रखा, बेगरी पार्ट का, जब माउंट अबू आए बेगरी पार्ट का समय था, खाने के लिए कुछ नहीं। अब नाश्ता क्या कराएंगे? तो बाबा ने क्या प्रोग्राम दिया बच्चों को? आज है ना, बाबा बच्चों को वन में लेके जाएंगे, पहाड़ियों में लेके जाएंगे। देवताओं को ना फल भोग लगाया जाता, सारे भावी देवताओं को फलों का आहार स्वीकार करना है। सब बड़े खुश, हम घूमने जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, वहां के फल खाएंगे, फल तोड़ेंगे। अब सबको इतनी खुशी, किसी को मालूम नहीं कि भंडारे में कुछ नहीं है। लेकिन बाबा का प्लान क्या है कि बच्चों को क्या खिलाऊं? चलो हम जंगल में लेके जाएंगे, पहाड़ियों में लेके जाएंगे, जंगल के फल वैरायटी, बहुत फल होते थे पहले, हम लोग भी दादी के संग गए हैं, फल खाए हैं, तो बहुत फल होते थे। तो वो फल बाबा ने क्या कहा कि बच्चे सब दिल भर के खा लो, आज है ना हम देवता बनेंगे। फल का ही नाश्ता, फिर लेके भी जाएंगे, फल का ही खाना होगा, जो नहीं आए ना उनका भी लेके जाएंगे। ओ सब खूब फल तोड़े, बहुत प्यार से खाए, भटूरे सारे फल लिए कि सबको भी देना, अब हमारा दोपहर का भोजन भी वही। अब बताओ, बाबा ने ये नहीं कहा इतने सारे बच्चों को है नहीं खाने? बोला होता तो सब, हमको अगर ऐसा बोला जाए तो उनको कैसे एंजॉय कराया। बहुत खुशी खुशी से खाए, खुशी खुशी से लेके भी आए, फिर साथ में लकड़ी भी लेके आए, क्योंकि लकड़ी जलानी होती है ना, चूल्हा जलाना होता। तो बाबा इस तरह बड़े रमणीकता से विषम परिस्थितियों का एहसास होने नहीं दिया, पुरुषार्थ कराया। तो हमारे आगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ही कोई हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं, हम उसको लेकर के पहाड़ बना के बैठ जाते हैं। तो हमें बाबा की इन बातों को याद करेंगे, हमें क्या लगता है? बड़ा इजी लगता है, कोई भी परिस्थिति नहीं, कोई बड़ी नहीं। वो एक गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा बड़ा है, मेरा साथ है, मैं भगवान की संतान, मेरे आगे परिस्थितियां, मेरे आगे प्रॉब्लम्स, मेरे आगे बीमारियां, कोई भी क्या काम के, मेरे को तो उसको पार करके जाना है। तो उसको भी हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताती हूँ कि हमने उस घटना को एंजॉय कैसे किया, और करने का कारण हमारा अपना पुरुषार्थ नहीं था, पीछे हमारी दादी जी का पुरुषार्थ था। जब मेरे को पहले दादी जी ने 1991 की बात है, उस समय जालौर जहां सेंटर बंद किया गया था, उस सेंटर को खोलने के लिए भेजा था। अपोजिशन का सामना होता था तब, उस समय की बात है। तो वैसे भी बारिश कम होती है इधर, लेकिन उस वर्ष इतनी बारिश हुई, जो किराए का मकान था, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ हो गया। अनाउंसमेंट हुआ कलेक्टर की तरफ से कि जो भी ऊंचे स्थानों में वो रहो, अगर निचला स्थान है जहाँ पानी भरता, वो सबको सेफ्टी से हम ऐसे स्थानों में रखेंगे। तो हमारा सेंटर जो था तो किराए का, अब उस समय मैं भी छोटी थी और मेरे साथ और एक छोटी बहन, दो बहनें थे, तो था तो बड़ा एक धर्मशाला था वो। तो रहने के कमरे ऊंचे, नीचे वो थोड़ा सा नीचे, चारों तरफ ऊंचाई पे मकान कमरे थे, बीच में आंगन जैसा था, तो वो गहरा था। तो वहां क्या हुआ, हमने कहा हम तो ऊंचे स्थान पे हैं, और जो थोड़ा सा नशा भी होता है ना, बाबा बैठा है, हमको कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई, तो जहां तहां पानी टपकने लगा, आना जाना सब बंद। कम्युनिकेशन बंद, कहीं फोन भी हमें दूसरे बाहर वो बूथ होता है ना एसटीडी बूथ, वहां जाके करना होता था, वो सब बंद, घर से बाहर नहीं जा सकते, सब दरवाजे बंद। कहीं कहीं पानी टपकने लगा, चलो जहां टपकता वहां छोड़ के दूसरी जगह, एक दिन दो दिन ऐसे हमने बिता लिया। उसके बाद कुछ भी कहीं कि केवल एक वो बारिश की भयानक आवाज, बहुत भयानक आवाज के अलावा कुछ नहीं। तो क्या करेंगे हमने, हमारा अपना पुरुषार्थ ने, मैं बता रही हूं कि क्या किया, पानी टपकने लगा। वैसे बीच में भी पानी तो नहीं था, हम लोग बर्तनों को रख करके बारिश के पानी को पीने के लिए कलेक्ट किया, ऊपर छत को सफाई करके वो जो छत का पानी आता उसको नहाने धोने भी। हम एक सप्ताह भर का ये प्रोग्राम था, बिना पानी बिना रोशनी का, हमने नहाना धोना भी किया, भोग भी बनाया, भोग खिलाया, बाबा को खाया, केवल खिचड़ी। दो दिन हमारे ऐसे बीते कि घर में कोई भी स्थान नहीं जहां पानी न टपक रहा हो। एक बहन छाता पकड़ती तो हम स्टोव जला के खिचड़ी बना लेते, छाता पकड़ के भोग लगाते, फिर छाता ऐसे रख करके हाथ में लेके खाना खाते। हमने सोए नहीं रात को, कुर्सी पे बैठे और रोशनी में, थोड़ी रोशनी जो होती, वो गीतों की किताब हमारे पास थी, लेकर के गीत गाते बैठते। अब हम भी छोटे थे, योग भी कितना लगाए, उस समय तो मुरलियां वो सब तो नहीं होती, पेपर लेके पढ़ो तो वो सारा भीग जाए, तो भी बैठ के ऐसे मुरली भी पढ़ लिया और वो किताब खोल करके बड़े संभाल के उसको, उसके गाने गाने लगे। गाते गाते करते करते छाता लेके दो दिन दो रात हम कुर्सी पे बैठे रहे, भोग भी बनाया, खिलाया बाबा को, खाया भी छाता के नीचे, पैरों को ऊपर करके कुर्सी पे बैठ जाते थे, प्लास्टिक की कुर्सी होती थी, बैठ जाते थे, ऐसे हो गया। इतना सा डर नहीं, बहुत एंजॉय करने लगे, देखेंगे अगर कुछ होगा तो बाबा का नाम होगा, हमारा क्या जाता, किसी की याद नहीं। और सच में हमने वो दो दिन को इतना एंजॉय किया, हमें नहीं पता, कारण का बाद में पता चला, कि बाद में ऐसे पता चला कि थोड़ा बारिश रुक गई, रास्ते खुल गए, तो बड़ी स्वराज मझधा उसमें शीलू दीदी को दादी ने भेजा, भाई लोगों को भेजा हमारे लिए टिफन, खाना, चाय, पता नहीं ये लोग कितने दिन से खाए नहीं होंगे, क्या होगा। दादी ने कहा, बताते हैं कि दादी यहाँ सबको कहा योग करो, उन कन्याओं को मैंने भेजा परंतु उनका कोई अता पता नहीं है, कल कुछ होगा तो उनके परिवार वालों को क्या जवाब दे। तो दादी ने यहाँ तपस्या कराया, यहाँ वो लोग तपस्या करे और हम वहां एंजॉय करें, और वो भी कैसे मस्त। जब दीदी आके, कहा पानी देख रहे, सब पानी गीला गीला, ऑन नहीं करना था बिजली का, कुछ भी ऑन नहीं करना था, हमने कहा आप ऑन नहीं करना, क्योंकि अभी जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक ऑन नहीं करना है, लेकिन ये सब पानी आया है, हम सेफ रहे। तो हमने कहा, हमने तो भोग भी बनाया, भोग भी खाया, हमने नहाए धोए भी सब, हमने नींद भी कर लिया, खूब गाए, खूब गाए। तो इस तरह से हमने एंजॉय किया, कारण हमारी दादी ने जहां यहां तपस्या किया, वो तपस्या के बल ने हमें रिंचक डर होने नहीं दिया। हम छोटे से चिपकली चूहा आए तो डर के कूदने वाले, और इतनी भयानक राक्षस जैसी आवाज से हम डरे नहीं। तो ये क्या है, जब हमारी तपस्या होती या तपस्या का साथ होता, बड़ों की दुआएं होती, हम कोई भी परिस्थिति को एंजॉय करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कोई बातें जो आ रही कोई बड़ी नहीं होती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती, लेकिन बाबा का साथ और हाथ, एक मुरली एक अमृत वेला, ये हमें कभी मिस नहीं होने देना चाहिए। बाबा को हर संबंधों से हम साथी में याद करें, हर बात में हर परिस्थिति में उसके अकॉर्डिंग हमारा साथी बना करके हम याद करें तो हर बात में हम एंजॉय करेंगे। कोई भी परिस्थिति में बड़ा मजा आएगा क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही एंजॉय करने का जीवन है, मौजों का जीवन है। हमने मौज किया तब तो श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी दिया है, उसको हमेशा मौज करता हुआ दिखाया। किसके साथ? गोप गोपियों के साथ, शिव बाबा के साथ। हम सब गोप गोपियां हर बात को नजरअंदाज करते, दुनिया के बातों को, केवल मेरा बाबा, बाबा का यज्ञ, बाबा का ईश्वरीय परिवार, इस बातों का ध्यान में रखते हुए जब पुरुषार्थ करते हैं तो आंतरिक खुशी बढ़ती जाती। इस खुशी से लौकिक परिवार वालों की भी सेवा करेंगे, खुशी से बाहर वालों की भी सेवा कर सकेंगे, हम खुशनुमा रहेंगे, पहली बात हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम हमारे पुरुषार्थ को एंजॉय करें, रमणीकता से लें। कोई को बर्डन नहीं, हमारा पुरुषार्थ इजी वे में है। हमारे जैसे ऊंचे से ऊंची पढ़ाई भगवान कितना सरल तरीके से सहज रूप से पढ़ाता। कई बातें याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। एक बार एक माता प्रदर्शनी समझा रही थी, हंसी की बात बताती हूँ। भोली भाली माता जहाँ मैं गढ़वाल के स्थान में वहां सेवा में थी, उस समय की बात है। भोली भाली गढ़वाली माता थी तो वो चित्रों पे समझाने लगी। तो जब रावण का चित्र आता है ना, तो ये उसे पूछा, ये ऐसे कैसे चित्र दिखाया, पांच उसके स्त्री के पुरुष के, ऐसे रावण को लौकिक वाले ऐसे नहीं दिखाते हमारे चित्र में। तो उसने कहा, ये तो रावण राज है ना भैया, ये पांच विकार, तो पांच विकार हुए या दस विकार, तो ये चेहरे जो है ना विकारों का, तो पांच विकार ही है, लेकिन समझो, वो कहती समझो पांच विकार आपके, समझो पांच विकार मेरे, अब बताओ। ये इस तरह से वो ज्ञान सुना रही। अब वो सुनने वाला बड़ा समझदार, मैं इतने में मैं आके, ये माता क्या सुना रही है। तो बहन जी क्या हुआ, स्त्री के पांच विकार पुरुष के पांच विकार, तो वो चित्र पे समझाने लगी। तो इस तरह से एक रमणीयता से वो समझाने वाले भोलेपन में समझा रहे, समझने वाला चुपचाप सुन रहा। अब वो सुनने वाला एक बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मिलिट्री वाला था, छुट्टी में आया हुआ था। वो आखिर उस भोली भाली माता के ज्ञान से बाद में ज्ञान में चला, धारणा करने लगा। तो एक हमारे ज्ञान को जैसे भोली भाली माताएं, कैसे रमणीक दास से। और वो दोबारा वो जो चित्र समझाते हैं ना लक्ष्मी नारायण के, भाई इनके जीवन में ऐसे होता, इनके कैरेक्टर्स बहुत श्रेष्ठ बताना था ना, उसको तो कैरेक्टर शब्द आया ना, इनके ट्रैक्टर ना बहुत अच्छे, इनके ट्रैक्टर बहुत अच्छे। तो कहते अच्छा माता जी, तब तो इनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती होगी। तो कहती तो क्यों नहीं होगी, अब उसको तो समझ में नहीं आया मैंने ट्रैक्टर बोला इसीलिए वो खेती बाड़ी, इनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से वो बोलना नहीं आता लेकिन बोल देते हैं भोलेपन में, और वो भी सुन करके, और ऐसे लोगों से सुनी हुई आत्मा ज्ञान में चल पड़ती है। तो ये हमारे यज्ञ का बहुत ही रमणीकता का वंडरफुल ज्ञान है, लेकिन हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को सहज रूप से सरल रूप से अपना करके बाबा के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अभी वक्त वो है संपन्नता को लाने का, इसीलिए हम अपने तपस्वी जीवन को बहुत अच्छा बना लें, लेकिन परिस्थितियों को रमणीकता से उठा के पार करें, लेकिन अपनी स्थिति को हाईएस्ट बना करके। दुनिया को अभी देने का वक्त है, संसार को, प्रकृति को देने का बहुत आवश्यक वक्त हैं, केवल हम ही वो काम कर सकते हैं। तो हमें खुशनुमा रहना है, बाबा के साथ एंजॉय करते हुए देते देते हमारे जीवन को पार करना है। बाबा ने ये भी एक बात कहा है कि बच्चे जो तपस्वी योगी धारणा मूर्त आत्माएं होंगी, वो आत्माएं समय कैसे परिवर्तन होगा पता नहीं चलेगा। वो एक एग्जाम्पल, जब भारत का पार्टीशन हुआ था, हमारे सारी दादियां कहा थी, उस समय पाकिस्तान बना हुआ था, वहां होते उनको कोई भी बात की पहचान नहीं थी, किसी बात का पता नहीं चला। बाहर मारकाट मची लेकिन दादियों को कुछ भी मालूम नहीं, वो तो अपने मौज में है और ही खुश हो रहे, वो इतनी सब्जी आ रही, इतना दूध आ रहा है, इतने फल आ रहे। पहले तो इतना नहीं आता था क्योंकि सब वो लोग पहुंचा रहे थे, ये लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान गवर्नमेंट वो पहुंचा रहा वहां, ये खुदा के बंदे हैं इनको पहुंचाओ, तो यहाँ सब कुछ पहुंच रहा। तो हमारी दादियां छोटे छोटे जो बच्चे थे वो लोग क्या कह रहे हैं, वाह मस्त, खूब फल आ रहे, खूब दूध आ रहा है, खूब सब्जियां आ रही, वैरायटी खाने को मिल रहा, उनको बाहर क्या हो रहा नहीं मालूम। ऐसे है ना, सब जानते इस बात को। तो बाबा ने साकार वाणी में कहा, मेरे ज्ञानी योगी तपस्वी धारणा मूर्त बच्चे जब अपनी तपस्या मेरे के सेवा करते रहेंगे, सकाश देते रहेंगे, जो ये परिवर्तन का समय कलयुग परिवर्तित हो गया, सतयुग कैसे आएगा पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, खेल खेल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कब होगा, जब हमारी धारणाएं, हमारी तपस्या, हमारी बुद्धि का लिंक बाबा से अटूट हो, मुरली के अलावा दूसरी बातें हमारी बुद्धि में आए नहीं, तब ये पॉसिबल है। ऐसी स्थिति हमको इस भट्टी में बनाना ही है, ये पक्का कर लो, क्योंकि ये मौका मिला बार बार नहीं मिलने वाला है। ऐसी स्थिति बना करके हमें अंतिम आने वाले पेपर में भी एंजॉय करते हुए बहुत ही खुशी खुशी से कैसे ट्रांसफर होंगे पता ही नहीं चलेगा। बाबा के वर्षन हमारे लिए हैं, वो हमारे पे ही लागू होंगे, वो प्रैक्टिकल हमें करना है। ऐसा पुरुषार्थ, इतनी शक्ति इस भट्टी से भर के जाना है। ओम शांति, धन्यवाद।